लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा उपकरण और दवाइयां मुहैया कराने के मिशन ACT एक्सीलेटर अप्रैल 2020 में शुरू किया गया और उसके बाद से इस मिशन के लिए केवल 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई है, जो कि इसके लिए जरूरी धनराशि के लगभग 10% हिस्सा भर है। ACT एक्सीलेटर मुहिम की मदद करने वाली सुविधा परिषद की संयुक्त अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग कर रहे हैं। परिषद के सदस्यों ने ताजा रणनीति और तेजी लाने के लिए धन निवेश की दलील की समीक्षा की, जिन्हें 17 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं ने कोविड-19 के संक्रमण के ऐसे परीक्षण किटों, दवाओं और टीकों का विकास तेजी से करने के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया है, जो किसी भी जरूरतमंद इंसान को हर जगह उपलब्ध हों। इन नेताओं में 30 से अधिक देशों के मुखिया और मंत्री शामिल थे। गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में उन्होंने 35 अरब डॉलर की और राशि जुटाने का भी संकल्प लिया। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा उपकरण व दवाएं मुहैया कराने के मिशन ACT एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाने के लिए अभी इतनी ही राशि की दरकार और होगी। इस मिशन के तहत दुनिया भर में कोविड-19 से बचाने वाले टीके की 2 अरब खुराकें, 24.5 करोड़ उपचार किटें और 50 करोड़ परीक्षण किटें तैयार की जानी हैं। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बैठक को अपने संबोधन में अपील करते हुए कहा कि मिशन के लिए धन जुटाने के वास्ते नाटकीय तेजी दिखानी होगी, ताकि दुनिया फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़े, सामान्य कामकाज में जुट जाए और फिर से समृद्धि के रास्ते पर चल सके।
We will never find this money in traditional humanitarian and ODA budgets. Donors must go deep.
महासचिव कह रहे थे कि हमें ये धन परंपरागत मानवीय सहायता बजट में नहीं मिलेगा। दानदाताओं को उस बजट में और ज्यादा गहराई से झांकना होगा जो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मंजूर किया गया है। संसाधनों का इस तरह सदुपयोग किए बिना इतना धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता जिसकी हमें जरूरत है, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय तक 170 से ज्यादा देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की मुहिम में शामिल हो चुके हैं। इस मिशन के 4 स्तंभों में से एक देशों को साथ लेकर चलना भी है। कोविड-19 के 10 वैक्सीन टीकों का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है, उनमें से 9 क्लिनिकल परीक्षण के स्तर पर पहुंच चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम गेब्रियसस ने धनराशि जुटाने में तेजी लाने के लिए दलील पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण आज भी हर दिन लगभग 5,000 लोगों की मौत हो रही है। उधर वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस वर्ष खरबों डॉलर का नुकसान होने का खतरा है।
विश्व भर में कोविड-19 के अब तक 3,35,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 8,95,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। विश्वव्यापी कोविड-19 संक्रमण के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 52,14,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 84,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां भारत सरकार के साथ महामारी से निपटने की कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं को पुख्ता बनाने, बचाव उपाय अपनाने और हालात की समीक्षा सहित अन्य प्रयासों में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 संक्रमण के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश के अनेक राज्यों में गंभीर हालात के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महामारी से निपटने की कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं को पुख्ता बनाने, बचाव उपाय अपनाने और हालात की समीक्षा सहित अन्य प्रयासों में जुटी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमितों के संपर्क में आए 80 लाख से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों के संदर्भ में 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने निजी बचाव सामग्री व उपकरणों की देशभर में आपूर्ति करने के काम में मदद की है। सबसे निर्बलों तक सहायता पहुंचाने के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अहम भूमिका निभाई है। राहत प्रयासों के तहत करीब 1 लाख प्रवासी कामगारों तक सामाजिक संरक्षा के लाभ पहुंचाना संभव हुआ है। साफ सफाई के काम में जुटे 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को बचाव किटें और 40 लाख किलो राशन का वितरण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कचरा निस्तारण से जुड़े विषय पर प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा मुश्किल हालात का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन डायरेक्टरी की सुविधा भी विकसित की गई है और तालाबंदी के दौरान प्रजनन व यौन स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इस सभा का हर वर्ष सब सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। इन प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा में अधिकतर विवाद के मंच होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2020 का 75वां सत्र सोमवार 15 सितंबर को शुरू हो गया, जिसमें विश्व के सामने मौजूद कोविड महामारी की अभूतपूर्व चुनौती के मद्देनजर एक क्षण मौन रखा गया। इस अवसर पर महासभा के नए अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें ये समझने में मजबूर कर दिया है कि हमारी सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षवाद कितना आवश्यक है। नए महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर ने सोमवार को न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के भव्य सभागार में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतिनिधियों को संबोधित कर कहा, जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं वह हमें बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत को याद दिलाता है। आमने सामने बैठकर चर्चा करने को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए इस सत्र की मेजबानी करना बहुत बड़ा सम्मान है और जब तक स्वास्थ्य इसकी अनुमति दे हम आमने सामने की बैठकें यथासंभव आयोजित करने की कोशिश करेंगे। महासभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों का इंतजाम करते हुए कहा कि कूटनीति के व्यापार में एक दूसरे के बारे में दीर्घकालिक समझ बनाने और सहमतियों व समझौतों पर पहुंचने के लिए आमने सामने बैठकर समकक्षों के साथ चर्चा करने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ, महिलाओं पर 4थे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ, परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय सभा और जैव विविधता शिखर सम्मेलन उच्च स्तरीय बैठकों के लिए पूर्ण समर्थन और नेतृत्व देने का वादा किया। उन्होंने सत्र की उद्घाटन बैठक को सूचित करते हुए कहा, 75वें सत्र के दौरान हम 2 विशेष महासभा सत्र आयोजित करेंगे, एक कोविड-19 पर जो महामारी पर चर्चा करने के लिए पहला विशेष सत्र होगा और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ। वोल्कान बोजकिर ने अपने कार्यकाल के लिए प्राथमिकताओं की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति की समीक्षा करना, सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाया जाना और सबसे कम विकसित देशों के लिए 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की तैयारी करना शामिल है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को बेल्जियम की कैथोलिक साप्ताहिक पत्रिका तेरसियो की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साप्ताहिक के सहयोगियों ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। तेरसियो साप्ताहिक में योगदान देने वाले सहयोगियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें रोम तीर्थ यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया तथा संप्रेषण माध्यम और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में उनके अनुपम कार्यों के लिए हार्दिक बधाइयां अर्पित की। संत पापा ने कहा, हम जिस समाज में जीवन यापन करते हैं वहां सूचना और जानकारी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब यह सूचना गुणकारी होती है तो यह हमें समस्याओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है तथा चुनौती भरे विश्व का सामना करने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक व्यवहारों को प्रेरित करती है। इस क्षेत्र में संत पापा ने कहा, विशेष रूप से ख्रिस्तीय सूचना प्रसारण की उपस्थिति नितांत आवश्यक है, जो विश्व में कलीसिया के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालती तथा अंतःकरणों को प्रशिक्षित करती है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि बेल्जियम की कैथोलिक साप्ताहिक पत्रिका तेरसियो तीसरी सहस्राब्दी के आरंभ में प्रकाशित संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के प्रेरितिक उद्बोधन से प्रेरित सन 2000 में स्थापित की गई थी, ताकि उद्धारकर्ता ख्रीस्त का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य तेजी से धर्म के प्रति उदासीन होते मीडियाई परिदृश्य में कलीसिया और ख्रिस्तीय बुद्धिजीवियों की आवाज को गुंजायमान बनाना था। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय समुदायों में जीवन की नई शैली को प्रेरित करने का श्रेय ख्रिस्तीय मीडिया को जाता है, जो सभी पूर्व धारणाओं से दूर सभी को अपने लेखों और रूपकों में शामिल करते हैं। संत पापा ने कहा कि कलीसिया के लिए संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस क्षेत्र में शामिल ख्रिस्तीय पत्रकारों और लेखकों का आह्वान किया जाता है कि वे बहुत ही ठोस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को मूर्त रूप प्रदान करें, और वह यह कि जाओ और विश्व को सुसमाचार सुनाओ। विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक विश्व को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने के योग्य है। शुक्रवार 18 सितंबर को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, प्रभु ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक मानव प्राणी महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक मानवीय लालच और लोभ से प्रदूषित इस विश्व को सृष्टिकर्ता द्वारा वांछित यथार्थ वास्तविकता में रूपांतरित करने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने बुल्गारिया की संरक्षिका संत सोफिया के पर्व पर प्रादि धर्माध्यक्ष न्योफित को एक संदेश भेजकर बुल्गारिया के शहीद संत क्लेमेंट और शहीद संत पोतितो के प्रति श्रद्धा अर्पित की और कहा कि कलीसिया के ये शहीद हम सबका आदर्श हैं। बुल्गारिया में 17 सितंबर को मनाए जाने वाले संत सोफिया के पर्व दिवस पर गुरुवार को शहीद संत क्लेमेंट और शहीद संत पोतितो के पवित्र अवशेषों को बुल्गारिया की राजधानी सोफिया शहर स्थित संत सोफिया महागिरजाघर में हस्तांतरित कर दिया गया है। इन संतों के पवित्र अवशेष संत पापा फ्रांसिस द्वारा बुल्गारिया की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को अर्पित किए गए थे। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, भले ही सदियां बीत गई हैं, तथापि संत क्लेमेंट और संत पोतितो हम सब के लिए एक शानदार उदाहरण है। बुल्गारिया के धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष क्रिस्टो प्राइकोव द्वारा पढ़े गए संत पापा के संदेश में आगे कहा गया, वे हमें याद दिलाते हैं कि शहीद सभी कलीसियाओं के हैं और शहादत में उन्होंने जिस पवित्र दुख को झेला है वह ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच प्रवाहित रक्त का साक्ष्य है, जो विभाजनों को दूर करता तथा सभी ख्रिस्तानुयायियों को मसीह के शिष्यों में दृश्यमान एकता को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करता है। संत पापा के भ्रातृभाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रादि धर्माध्यक्ष न्योफित ने कहा कि उनके लिए यह महान गौरव और हर्ष का विषय है। महान शहीद संत के अवशेषों को लौटाने के लिए भी प्रादि धर्माध्यक्ष न्योफित ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, इतिहास इन महापुरुषों के अद्वितीय जीवन और कार्य की गवाही देता है। प्रथम ख्रिस्तीय और मसीह के विश्वास के गवाह बने इन संतों ने इसी प्राचीन शहर में अपनी सांसारिक यात्रा शुरू की थी। इन संतों के अवशेषों को ग्रहण करना हमारे लिए महान गौरव का विषय है, जिसके लिए हम आपके प्रति संत पापा फ्रांसिस आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, बुल्गारिया की कलीसिया की आधारशिला रखने वाले तथा उसके प्रथम धर्माध्यक्ष रहे सम्मानित संत पापा क्लेमेंट बुल्गारिया और रोम की कलीसियाओं के बीच एक सेतु हैं। वैटिकन के वरिष्ठ महाधर्माध्यक्ष इवान यूरकोविट्स ने एक वक्तव्य जारी कर धनाढ्य राष्ट्रों से आग्रह किया है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट का प्रत्युत्तर देते समय वे किसी को भी पीछे न छोड़ें। जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष इवान यूरकोविट्स ने बुधवार को मानवाधिकार समिति के 45वें सदन में कहा कि परम धर्मपीठ स्वीकार करती है कि कोविड महामारी ने समाज और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इसीलिए वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह करती है कि इस आपात स्थिति का प्रत्युत्तर देते समय वे किसी को भी पीछे न छोड़ें। इस बात पर बल देते हुए कि सभी को विकास का अधिकार है, महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक सेवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए तथा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचने के लिए निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय अनुकूल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रों की है, जिसके लिए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण की जरूरत है जो निर्धन लोगों के पक्ष में नीतियों को निर्मित करने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण विकास की मौलिक शर्त है। उन्होंने कहा कि मानव के अखंड विकास के लिए तथा मानव गरिमा को प्रतिष्ठापित करने हेतु इसकी नितांत आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।